श्लोक संख्या आज हमारा है बोर्ड पर 34। तो मेरे पीछे दोहराइएगा, क्रम तो गम पदे के द्वितीय दिवम विभो कम च कायेन महता कार्तियस्य कुतो गति। शब्दार्थ मेरे पीछे तो रहिए, कर्मतः कर्मश गाम भूमि पदायकेन एक पग से द्वितीयेन दूसरे पग से दिवं सारा बाह्य आकाश विभो विश्वरूप का खम च आकाश भी कायेन उनके दिव्य शरीर के विस्तार से मेहता विश्व रूप से तार्तीयस्य जहां तक तीसरे पग की बात है कुतः कहां है गति ही पग रखने के लिए। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। मेरे पीछे दोहराइए, सर्वप्रथम वामन देव एक पग से तीनों लोकों को ले लेंगे, तत्पश्चात वे दूसरा पग भरेंगे और बाह्य आकाश की प्रत्येक वस्तु को ले लेंगे और तब वे अपने विश्व रूप का विस्तार करके सर्वस्व पर अधिकार जमा लेंगे। तब तुम उन्हें तीसरा पग रखने के लिए कहां स्थान दोगे? तात्पर्य, शुक्राचार्य बलि महाराज को बताना चाह रहे थे कि वे भगवान वामन द्वारा ठगे जाएंगे। उन्होंने कहा, तुमने तीन पग का वचन दिया है किंतु केवल दो ही पग में तुम्हारा सर्वस्व समाप्त हो जाएगा, तब तुम उन्हें तीसरे पग के लिए किस प्रकार स्थान दे पाओगे? किंतु शुक्राचार्य को पता नहीं था कि भगवान अपने भक्त की किस तरह रक्षा करते हैं। भक्त को चाहिए कि भगवान की सेवा में वह अपने अधिकार की सारी वस्तुएं खतरे में डाल दे, किंतु उसकी सदैव रक्षा होगी और वह कभी भी परास्त नहीं हो सकेगा। शुक्राचार्य ने भौतिक दृष्टि से अनुमान लगाकर सोचा कि बलि महाराज किसी भी तरह ब्रह्मचारी वामन देव को दिया गया अपना वचन पूरा नहीं कर सकेंगे। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः वांछा कल्पतरूपयाश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत आज की सुबह की सभा में, जिसमें कि हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का ये 19वें अध्याय का 34वां श्लोक। तो श्रीमद् भागवतम देखिए प्रकट कैसे हुआ था। प्यास लगी थी, प्यास से प्रकट हुआ ये श्रीमद् भागवतम ना। दो प्रकार की प्यास है। एक प्यास थी कि शरीर के लिए आवश्यकता थी, पानी नहीं मिला तो प्यास प्यासा 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 होते होते कुछ ऐसा काम हो गया, आवेश में आकर के एक सर को डाल दिया गले में, तो भागवतम प्रकट हुआ। लेकिन फिर ऐसी प्यास लगी उस अमृत रस को पीने की जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों से रस निकलता है। वो प्यास ऐसी लगी कि फिर भौतिक प्यास जो थी, शरीर की जो प्यास थी, वो भूल गए। तो इस संसार में प्यास सबको लगती है, लेकिन हमें यह देखना है कि हम शरीर की प्यास के लिए प्रयास करते हैं या फिर आत्मा की प्यास के लिए प्रयास करते हैं। हमेशा प्यास, हमेशा खोज, हमेशा तलाश, हमेशा जीवन में कुछ ना कुछ करने की इच्छा होती है, लेकिन हमें यह देखना चाहिए कि शरीर की आवश्यकता के लिए किया जा रहा है या आत्मा की आवश्यकता के लिए किया जा रहा है। तो उस प्यास से क्या हुआ, श्रीमद् भागवतम का वो महान एक ऐसा भगवान का पुस्तक अवतार प्रकट हुआ, जो कि आज तक भी और आने वाले कितने समय तक ये शुद्ध करता रहेगा, पवित्र करता रहेगा। तो श्रील प्रभुपाद जी का हमें थैंक्स करना चाहिए कि उन्होंने हमें इस भागवतम के सागर के अंदर अपनी प्यास बुझाने का हमें अवसर दिया है कि थोड़ा थोड़ा हम लोग भी एक एक ड्रॉप हर रोज ले सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आज का जो श्लोक है, ये श्लोक है कर्म तो गाम पदे के द्वितीयन दिवं विभो खमच कायेन महता तारतीय से कुतो गति। ये बोल रहे हैं कौन, आपने ये प्रसंग सुना होगा, कौन बोल रहे हैं, शुक्राचार्य जी बोल रहे हैं। और किन को बोल रहे हैं, बलि महाराज को, और वो भी कहां पर, नर्मदा नदी के तट पर। वहां पर वो कर रहे हैं अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, क्योंकि उनके गुरुजी ने उन्हें आदेश दिया कि आप ये यज्ञ करो, जब आप 100 अश्वमेध यज्ञ कर लोगे तो क्या होगा, आपको प्राप्ति होगी। तो ये जो अध्याय है, ये जो स्कंध है, विशेष रूप से भगवान वामदेव के लिए है। देखिए भगवान वामन देव, हमारा जो ब्रह्मांड है ना, जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, इस ब्रह्मांड की पहचान है भगवान वामन देव। आप पूछोगे कैसे, क्योंकि कोई भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। जब ब्रह्मांड कारण समुद्र में तैर रहे होते हैं बहुत सारे, तो कोई पहचान नहीं सकता ये कौन सा ब्रह्मांड है, ये कौन सा ब्रह्मांड है, ये कौन सा ब्रह्मांड है। लेकिन भगवान वामन देव जो है वो हमारे ब्रह्मांड की एकमात्र पहचान है। ये घटना मिलती है गर्ग संहिता के अंदर। गर्ग संहिता में जब सारे जैसे पृथ्वी देवी गई गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी गए श्वेत द्वीप में, और वहां पर क्या हुआ कि भगवान विष्णु ने, श्रीमद् भागवतों में तो ये बताया गया है कि एक वाणी प्रकट हुई और उन्होंने कहा मैं शीघ्र अवतरित होऊंगा, लेकिन गर्ग संहिता में गर्ग मुनि जी ने थोड़ा एक्सप्लेन में बताया, डिटेल में बताया इस बात को। उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु आए ब्रह्मा जी के सामने और उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मदेव, इस बार मैं अवतार नहीं लूंगा, इस बार तो साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, वही प्रकट होंगे, इसलिए हम सब उन्हीं के पास चलते हैं। तो शिव जी भी हैं, महादेव, ब्रह्मा जी हैं, और भी बहुत सारे देवता हैं, वो गाय का रूप पृथ्वी धारण किए भी है, सबको विष्णु भगवान लेके जाते हैं और उसी रास्ते से ले जाते हैं जिस रास्ते से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ले गए थे जब ब्राह्मणों के बालक मर रहे थे चोरी, वो ले गए थे महाविष्णु, उसी रास्ते से वो लेकर गए। और जब वो वहां पर पहुंचते हैं गोलोक धाम के दरवाजे पर, वहां पर ये वार्तालाप मिलता है हमारे ब्रह्मांड का। वहां पर एक बॉडीगार्ड खड़ी है, उनका नाम है सत चंद्र आनना। सत मींस 100, सत चंद्र, चंद्र मतलब चंद्रमा, आनना का मतलब मुखमंडल। वो इतने सुंदर थी जिसका मुखमंडल इतना सुंदर था कि 100-100 चंद्रमा एक साथ प्रकट हो। हाथ में बैंक लेकर खड़ी थी, छड़ी लेकर खड़ी थी, और जैसे ही भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और महादेव सब देवता अंदर आने लगे तो उन्होंने रोक लिया। आप कहां जा रहे हो बिना परमिशन, विदाउट परमिशन? अब बताइए कहां से, कौन है, किसलिए आए? तो ब्रह्मा जी, जो हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी थे, वो आगे आए, उन्होंने कहा कि अंदर जाकर बताओ कि ब्रह्मा जी आए हैं। तो ब्रह्मा जी आए हैं तो सत चंद्रन्ना पूछती है, कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो आप? अब ब्रह्मा जी हमारे चक्कर में पड़ गए, उन्होंने कहा कि आप अंदर जाके बताइए ब्रह्मा जी आए हैं। तो सत चंद्रन्ना कहती है कि हे ब्रह्मदेव, ये जो कारण समुद्र यहां पर है ना, इसमें आप देख रहे हो बुलबुले की तरह से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़क रहे हैं पानी में। अब मैं कैसे बताऊं कि कौन से ब्रह्मांड से आए हो आप? अब हमारे ब्रह्मा जी जो है चक्कर में पड़ गए, इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था आज तक। उनका शरीर पूरा बुद्धि से बना हुआ है लेकिन वो ये जानते नहीं कि कौन से ब्रह्मांड से आए हैं। तो फिर परिहास किया सत चंद्रन्ना ने, उन्होंने कहा आप तो कितने मूर्ख व्यक्ति हो, आपको ये भी नहीं पता कौन से गांव से आए हो। कम से कम व्यक्ति को ये तो पता होता मैं उस गांव से आया हूं, आपको इतना भी नहीं पता कौन से गांव से आए हो। आपकी स्थिति तो ऐसी है जैसे गुलर का जो फूल होता है उसमें बहुत सारे कीड़े रहते हैं और वो कीड़े नहीं जानते बाहर दुनिया में क्या हो रहा, बस उनकी दुनिया वही होती है। जय श्री श्री कृष्ण भगवान भगवान की जय, श्री श्री राधिका भगवान की जय, श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव भगवान की जय। तो वो कहती है आपकी स्थिति तो ऐसी है जैसे गुलर के फूल में रहने वाले बहुत सारे कीड़े रहते हैं, वो उसी को अपनी दुनिया सोचते हैं और आपकी भी वही स्थिति है। अब हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए, अब क्या बताएं? वो पूछते हैं महादेव आप कुछ जानते हैं क्या? शिव जी कहते हैं कि मैं भी कुछ नहीं जानता, मैं भी ये जानता हूं बस हमारा ब्रह्मांड है। तो फिर भगवान विष्णु जो साइड में खड़े थे उन्होंने कहा कि हे देवी मैं कुछ बताता हूं पहचान। तो भगवान विष्णु जो साथ में गए थे वो बताते हैं कि हे देवी हम उस ब्रह्मांड से आए हैं जिसमें भगवान का वामन अवतार हुआ था, और उस ब्रह्मांड की पहचान क्या है, जब इन्होंने तीसरा पग उठाया था तो हमारे ब्रह्मांड की अंदर छेद हो गया था और उसमें से कारण समुद्र का जल आया था, तो हमारे ब्रह्मांड की पहचान यह है कि नख से छेद वाला जो ब्रह्मांड है वो उस ब्रह्मांड से आए हैं। तो सचंद्रन्ना कहती है ये कुछ थोड़ा बुद्धिमान लगता है, बाकी सारे फुलिश है, एकदम मूर्ख है, इनको कुछ पता नहीं कहां से आए कहां जाना है। तो फिर अंदर गई और भगवान श्री कृष्ण को सूचना देती है, और जब श्री कृष्ण कहते हैं नहीं उनको आने दो तो सब लोग जाते हैं और वहां देखते हैं कि 16 दल का एक सफेद कमल है और उसके ऊपर 8 दल वाला एक और कमल है और फिर उसके ऊपर एक चमचमाता सिंहासन है और उस पर उस सिंहासन पर विराजमान है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण राधिका जी के साथ में विराजमान है और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तो सारे देवताओं ने सबने जब वो बाकी छवि देखी तो आनंद के समुद्र में गोता लगाने लगे, आश्चर्यचकित रह गए कि इतना सुंदर है प्रभु, इतना दिव्य झांकी उन्होंने देखी। तो ये जो ब्रह्मांड है हमारा, ये वामन देव के जो नख है यही इस ब्रह्मांड की एकमात्र पहचान है, नहीं तो कोई पहचान नहीं है। वामन देव दूसरा इस मनमंत्र के अवतार भी माने जाते हैं, जैसे युग अवतार है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, हर युग में एक अवतार होता है, लेकिन वामन देव जो है मनमंत्र अवतार है। अगर हमसे कोई पूछे कि वैवस्वत मनमंत्र चल रहा है, इस वैवस्वत मनमंत्र के अवतार कौन है, तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, हमें बताना चाहिए वामन देव, क्योंकि हर मनमंत्र में भगवान का एक अवतार होता है। तो ये जो अध्याय है, विशेष रूप से ये जो स्कंध है, ये भगवान वामन देव के लिए ही जाना जाता है। और जैसा कि आपने प्रसंग सुना जो बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है कि जो 12 महाजनों में से एक महाजन की गाथा हम सुन रहे हैं, क्योंकि महाजनों के विषय में जितना ही हम सुनते हैं हम लोगों को उत्साह मिलता है, हम लोगों का आत्मविश्वास बढ़ता है, हम लोगों को सही मार्गदर्शन मिलता है। महाजन का क्या अर्थ होता है? महाजन का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसके चरण चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए, जिसकी वाणी को सुनना चाहिए, जो जो उसने क्रियाएं की हैं हमें भी उसके चरण चिन्हों पर चलने का प्रयास करना चाहिए। तो इस स्कंद के अंदर और इस अध्याय के अंदर वो लीला चल रही है कि किस प्रकार से दोनों के अंदर वार्तालाप हो रहा है। जैसा आपने सुना कि भगवान वामन देव प्रकट हुए कश्यप ऋषि और अदिति के घर में, उन्होंने पहले चतुर्भुज रूप दिखा दिया था अदिति को कि मैं आपके यहां पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा, और जब वो चले तो पृथ्वी देवी कांप रही थी। हालांकि छोटे कद के हैं, वामन है, वामन का मतलब बहुत छोटा, हाथ में छत्र लिए और सांवले रंग के हैं वामन देव। किसी सीरियल में मैंने दिखा था, उसमें दिखाया था कि वो गोरे रंग के दिखाए गए हैं, गोरांग नहीं है वामन देव, सांवले रंग के हैं। और जब वो चल रहे हैं तो पृथ्वी कंपायमान है, एक एक कदम उनका जो भार सहन नहीं कर पा रही है, क्योंकि भगवान है। इसके अलावा दूसरा जो वहां पर बैठे हैं कौन है? शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी के विषय में जैसे आपने सुना होगा कि भगवद्गीता में भगवान ने बताया कवि नाम अहम उष्णा कवि, तो कवि का अर्थ होता है जो अत्यंत एक्सपर्ट है विचार करने में कि आगे चलकर क्या होने वाला है। तो उष्णा कवि चूंकि वो सारी लीला जानते हैं कि भगवान क्या करने वाले हैं, देखिए कितना एक्सपर्टाइज है उनकी, जैसे वाल्मीकि ऋषि की एक्सपर्टाइज क्या थी कि उन्होंने पहले से ही 24,000 श्लोकों की रचना कर दी और बाद में घबराने लगे नारद जी से मिल करके कि मैंने जो लिखा है कि प्रभु श्री राम ऐसा ही कुछ करेंगे ना, कहीं कुछ डाइवर्ट तो नहीं होगा। लेकिन भगवान नारद जी जो है उनको विश्वास दिलाते हैं, नहीं नहीं नहीं, आपने जो लिखा है भगवान ऐसे ही करेंगे। तो ठीक यहां पर भी शुक्राचार्य जी ने बिल्कुल बता दिया। तो शुक्राचार्य जी आज कहां पर है इसके विषय में भागवतम के 5वें स्कंद में मिलता है, 5वें स्कंद का 12वें अध्याय का 13वां श्लोक, उसमें कहा गया है उसन सा बुद्धो, मतलब जो सूर्य है हमारा जो हम देख रहे हैं सूर्य से 1,00,000 योजन ऊपर है चंद्रमा। हालांकि जब प्रभुपाद जी ने अमेरिका में ये कहा तो कई डिप्यूटी छोड़कर चले गए उनको कि ऐसा कैसे हो सकता है, सबसे पहले तो चंद्रमा है, क्योंकि तो साइंटिस्ट का ये कहना पहले चंद्रमा बहुत निकट है फिर सूर्य है। लेकिन प्रभुपाद जी ने बताया ये क्रम यही है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताएंगे इसी चैप्टर में आएगा कि जैसे ये वार है, पहले सबसे पहला वार कौन सा आता है? संडे, फिर मंडे, तो इसी क्रम से ये सारे लोग भी हैं, पहले सूर्य है फिर चंद्रमा है। तो सूर्य से 1,00,000 योजन ऊपर चंद्रमा, फिर 2,00,000 योजन ऊपर है नक्षत्र, और फिर उनसे 2,00,000 ऊपर योजन यानी 16,00,000 मील ऊपर है शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह वहां पर है और उनका कार्य क्या है? यह सूर्य की भांति मंद और तीव्र और मध्यम गति से चलता है, वर्षा में विघ्न डालने वाले ग्रहों को शांत करने वाला है। अगर वर्षा आती है तो ये शुक्राचार्य आजकल क्या कर रहे हैं, मतलब आजकल उनकी सेवा भगवान ने ये लगाई है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया था जो मैं सबसे आखिरी में बताऊंगा। तो जब वर्षा में विघ्न आता है तो ये उसको पॉजिटिव बनाते हैं आजकल शुक्राचार्य जी, और इसे शुक्राचार्य जी को आज ब्रह्मांड के जीवों के अनुकूल माना जाता है। अभी नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है आज की तिथि में इस समय, क्योंकि अब उतने बड़े राक्षस नहीं रहे जितने पहले थे। पहले इनको कुछ सेवा मिलती थी कि उनको जाकर के शिष्य बनाओ, उनको गाइड करो, लेकिन आजकल उतना नहीं है, तो इसलिए ये वहां पर ये सेवा करते हैं। अब हम देखते हैं कि तीसरा किरदार कौन है वहां पर? बलि महाराज। बलि महाराज जो है तीनों लोगों के विजेता बन चुके हैं, सब कुछ उनके कमांड में है, और अपने दादाश्री यानी प्रहलाद महाराज का वो बहुत ही गहन स्मरण रखते हैं। उनकी जो ये जो भक्ति में इतनी महाजनशिप उनको प्राप्त हुई, इसका मूल कारण यही बताया गया है कि वो प्रतिक्षण अपने दादाश्री प्रहलाद महाराज का बड़ा ही गहनता से स्मरण करते थे। तो हमें से शिक्षा क्या मिलती है? हमें से ये शिक्षा मिलती है कि चाहे हम कहीं भी हों, मंदिर में हों, किसी सेवा में भी हों, और ऑफिस में हों, किसी भी स्थान में, प्रचार में हों, हमें अपने वरिष्ठ वैष्णवों का चिंतन करना चाहिए। भगवान का चिंतन करने की योग्यता हम नहीं है अभी कि हमें याद आए कि कृष्ण रूप गोस्वामी की तरफ देख पाए, कृष्ण वहां लीला कर रहे हैं, वो स्थिति तो हमारी नहीं है। लेकिन हम जैसे रुक्मी कृष्ण प्रभु है या और भी यहाँ पर कई वरिष्ठ वैष्णव है या गुरु महाराज है, खासकर से गुरु महाराज है, अगर हम ये देखें कि गुरु महाराज मेरे साथ हैं, तो हम हमेशा ही एकदम आनंदित रहेंगे भक्ति के अंदर। जैसे श्री प्रभुपाद जी से जब पूछा गया कि प्रभुपाद आप कैसे इतने आंदोलन को आगे लेकर गए, आप अकेले गए थे अमेरिका, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मेरे गुरु महाराज मेरे साथ नहीं है। तो हम अच्छी तरह जानते हैं, अगर हम हमेशा ये सोचे कि मेरे गुरु महाराज मुझे देख रहे हैं, तो हम कभी भी डाइवर्ट नहीं होंगे। चाहे हम अकेले हों, चाहे हम भक्तों के बीच में हों, चाहे हम पब्लिक के बीच में हों, हमें हमेशा ही अपने गुरु महाराज का चिंतन करना चाहिए, जैसा कि बलि महाराज कर रहे थे। क्योंकि बहुत कठिन निर्णय था ये, बहुत कठिन निर्णय है। देखिए कि गुरु जी मना कर रहे हैं, गुरु जी क्या कर रहे हैं, कर्म तो गाम पद एक, कि अभी ये कर्म से क्या करने वाले हैं कि एक पद में पूरा नीचे का लोग और दूसरे पद में ऊपर का लोग ले लेंगे, और तीसरा कहां रखोगे, फिर कैसे दोगे, और अगर नहीं दोगे तो नरक में जाना पड़ेगा। सोचिए अपना ही गुरु ऐसा बोल रहा है, तो बहुत कठिन निर्णय है ऐसा सोचना कि अब मैं क्या करूं जब मेरे गुरु, क्योंकि आमतौर पर तो यही कहा जाता है कि आप गुरु जो बताए उसी का फॉलो करो, और गुरु मना कर रहा है। लेकिन बहुत कठिन निर्णय को ले पाए बलि महाराज, क्योंकि प्रहलाद महाराज का वो बहुत गहन स्मरण कर रहे थे। अब हम स्थिति देखते हैं शुक्राचार्य जी की, कि इतने तीव्र कर्मकांड में ज्ञानी होने के बावजूद वो भगवान से विरोध कर रहे हैं, भगवान के भक्त नहीं है। इसीलिए तो पद्म पुराण के अंदर एक श्लोक आता है, षट कर्म निपुण मंत्र तंत्र विशारदा अवैष्णव गुरु न सयान वैष्णव स्वपच्यो गुरु। उसमें कहा गया षट कर्म निपुणों, अगर कोई छह कर्मों में भी निपुण हो, छह कर्म कौन कौन से होते हैं, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रहण, इसमें भी एक्सपर्ट हो। लेकिन आमतौर पर ना जो बेचारे जो कम बुद्धिमान लोग होते हैं वो डर जाते हैं जब कोई पंडित जी आकर के वो भुआ स्वाहा स्वाहा ऊपर ही फास्ट वो जो मंत्र उच्चारण करता है, तो आम व्यक्ति डर जाता है, भाई पता नहीं क्या बोल रहे हैं। हालांकि मुझे एक अनुभव है, एक बार क्या हुआ कि किसी के विवाह में जाना पड़ा, तो उसमें क्या हो रहा था कि लड़की और लड़के के फेरे हो रहे थे, तो जो पंडित जी थे वो, क्योंकि जब शादियां बहुत होती तो पंडित जी मिलते नहीं है, तो किसी को कह रहे आप चलो करा देना जो बोलना है बोल देना, तो वो पंडित जी को कुछ आता जाता नहीं था, और जब लड़की लड़के के फेरे हो रहे थे तो वो मंत्रोच्चार कर रहे थे, लास्ट में बोलते थे स्वाहा। तो हुआ क्या, तो एक व्यक्ति जानता था ये क्या बोल रहे हैं, वो आप सुनेंगे वो क्या बोल रहा था, जब किसी की मृत्यु हो जाए तो वो क्रियाकर्म जो कराया जाता वो उसने रटा हुआ था यानी उसने फेरे में ही वो मंत्र उच्चारण कर दिए। तो षट कर्म निपुणो मंत्र तंत्र विशारदा अवैष्णव, लेकिन अगर कोई वैष्णव नहीं है, वैष्णव नहीं है, षट कर्म निपुण है, अवैष्णव गुरु न से वो गुरु नहीं बन सकता, वैष्णव सब बचो गुरु। और अगर कोई कुत्ता खाने वाले चंडाल के घर में भी पैदा हुआ है लेकिन अगर वो वैष्णव है तो वो गुरु बनाया जा सकता है। सोचिए ये हमारे ग्रंथों ने हमें बताया है, लेकिन आज दुर्भाग्य ये है कि लोग ग्रंथों को पढ़ते नहीं है और भक्तों का संग करते नहीं है, तो फिर आरक्षण के लिए लड़ाई करते हैं, जाट आरक्षण और ये आरक्षण वो आरक्षण, है ना, कितना सारा, कितनी समस्या, कितना पॉलिटिक्स चलता है इसी कारण से। सोचिए अगर ये एक समस्या हल हो जाए तो पूरा सोसाइटी में कितना अशांति आ जाए, कि चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग से, इसके हिसाब से अगर है तो, लेकिन इसको नहीं माना जाता। तो इतने प्रकांड विद्वान होने के बावजूद वो क्या कर रहे हैं, वो भगवान से कह रहे हैं, भगवान के लिए कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तुम्हारा सब कुछ ले लेगा और फिर तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि सिले भक्ति सिद्धांत महाराज कितने प्रकांड सिद्धांत सूर्य का जिन्होंने लिखा, जो तात्पर्य प्रोपर्स लिखे, इतने एक्सपर्ट थे भक्ति सिद्धांत महाराज कि अगले 5 मिनट में क्या होने वाला वो बता सकते थे। लेकिन फिर भी जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए, उन्होंने उसको छोड़ दिया कि नहीं, ये मैं यहां समय नष्ट नहीं करूंगा। कृष्ण भावनामृत को उन्होंने अपनाया। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि जो भी हमारे पास हुनर है, जो भी हमने आर्ट सीखी है, अगर हम उसको कृष्ण भक्ति में प्रयोग करेंगे तो वो हमारे लिए फायदे का सौदा है। और अगर हमारे पास कोई आर्ट है, कुछ भी हम जानते हैं, जैसे प्रभुपाद जी पूछते थे, अगर आप पेंटिंग जानते हो तो कृष्ण के चित्र बनाओ, कुकिंग जानते हो तो कृष्ण के लिए प्रसाद बनाओ, प्रचार करना जब बोल सकते हो तो कृष्ण के लिए प्रचार करो। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने क्या किया, उसको छोड़ दिया, उसको ने इंपॉर्टेंस दी। इसी तरह से प्रभुपाद जी, एक बार प्रभुपाद को बुलाया गया, आप लोगों को आश्चर्य होगा, हिंदी में लेक्चर है वो। प्रभुपाद जी को एक बार किसी अखाड़े में बुलाया गया, वहां पर सारे पहलवान जो है एक्सरसाइज कर रहे थे बस। और मैं सोच रहा था उस गैसेट में मॉर्निंग में बताया गया उसमें कि प्रभुपाद जी जो है आप किसी अखाड़े में जा रहे हैं जहां सारे पहलवान है। तो मैं सोच रहा था प्रभुपाद जी वहां क्या बताएंगे, इन लोगों को क्या बताएं, उन लोगों का एक ही कार्य बस बॉडी बिल्डिंग करना। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर प्रवचन दिया वहां पर। प्रभुपाद जी ने उन सबको देखा, सब लोग बड़े हट्टे कट्टे। प्रभुपाद जी ने कहा, ओ सब लोग पहलवान लगता है यहां पर सारे, लेकिन हनुमान जी का उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने। देखिए, हनुमान जी से बढ़कर कोई पहलवान नहीं है। और हनुमान जी ने अपनी शारीरिक शक्ति का प्रयोग किसके लिए किया, प्रभु श्री राम के लिए किया। उन्होंने जगत माता लक्ष्मी को मिला दिया प्रभु राम से, जिसे रावण ने हर लिया था। तो आज भी वही समस्या है, आज भी जो आज का रावण है उसने लक्ष्मी को हरण कर लिया है। और आप लोगों को चाहिए वो सारी लक्ष्मी जो है प्रभु के चरणों में भेजो, अपनी शक्ति का सदुपयोग करो। तो प्रभुपाद जी वहां बताते हैं, अगर किसी के पास कोई आर्ट है और उसे वो भगवान की सेवा में नहीं लगाता है तो वही उसकी आर्ट उसके लिए दुखदाई बनेगी आखिर के अंदर। सोचिए कितनी विडंबना है ये। अगर हम धनी हैं और उसको उपयोग नहीं करते हैं भगवान की सेवा में, तो वो धन हमारे लिए क्या बनेगा, दुखदाई बनेगा। जैसे अभी मैं सुनता आ रहा था एक लेक्चर प्रभुपाद का, हिंदी में बोल रहे थे प्रभुपाद जी उसमें भी, कि ये लड़का जो बैठा है अल्बर्ट फोर्ड, इसने मुझे $2.5 करोड़ दिया है। तो सब लोग ताली बजाते हैं, ये लड़का, इसने इतना मुझे धन दिया, इसी के कारण हमारे कई मंदिरों का खर्चा चल रहा है। सोचिए ये लेक्चर कम से कम आई थिंक 1970 के आसपास का होगा। उस समय अल्बर्ट फोर्ड जो अम्बरीश दास है, उसने उस समय इतना पैसा दिया। अगर धन ना लगाया जाए भगवान की सेवा में, तो व्यक्ति फिर जब जाएगा तो क्या सोचेगा, अरे ये धन मैंने कमाया था, इतना बैलेंस है, इसका सबका क्या होगा। तो उसी के चिंतन में शरीर छूटेगा तो फिर बहुत समस्या हो जाएगी, है ना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हमारे पास कुछ योग्यता है तो हम उसे लगाएं भगवान की सेवा में, तो ही फायदे का सौदा है। नहीं तो दुर्वासा मुनि का उदाहरण देखते हैं। दुर्वासा मुनि के अंदर कितनी योग्यता थी कि वो वैकुंठ तक पहुंच गए थे जब सुदर्शन चक्र उनके पीछे था, लेकिन भगवान के भक्त नहीं थे, भगवान के भक्त से टक्कर ली थी, तो वापस भगवान ने भी उनको वापस भेज दिया वैकुंठ से। तो इससे क्या शिक्षा निकल कर आती है कि भगवान की सेवा और भगवान के भक्तों से जो मिलन है, भगवान के भक्तों से जो सुनना है, ये इस जीवन का सबसे आनंददायक है। एक बार मुझसे एक पर्सनल किसी ने क्वेश्चन किया, मैं क्लास दे रहा था कहीं पर, तो उन्होंने मुझसे पूछा किसी ने कि प्रभु जी आपको इस कृष्ण भक्ति के अंदर सबसे ज्यादा आनंद किस काम में आता है, जपा में, प्रसाद लेने में, या कब आप सुरक्षित अनुभव करते हैं। तो मैंने बहुत सोचा कि वास्तव में ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैंने अपने अंदर खंगाल के देखा कि सबसे सुरक्षित हम भक्ति में अपने आप को कब अनुभव करते हैं। तो मुझे मिला कि जब मैं प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ता हूं या प्रभुपाद जी के ग्रंथों को सुनता हूं, दैट इज द 100% सेफेस्ट सिचुएशन इन ए डिवोटीज लाइफ। अगर हम प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़े, उनके तात्पर्य को पढ़े, तो इतना आनंद है कि एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम लोग उसे। तो ये हमें इसमें अपनी शक्ति लगानी चाहिए। आगे हम देखते हैं कि एक शब्द इसमें आया, काये न महता, इस श्लोक में दिया ना, खम च काये न महता, कायन महिमा का अर्थ है कि ये इतना बड़ा विस्तार करेगा कि सबको ढक लेगा। तो इस शब्द से हमें क्या पता चलता है कि भगवान के अंदर ये योग्यता है कि वो अपने शरीर को एक्सपैंड कर सकते हैं इतनी मात्रा में कि पूरा ब्रह्मांड को, अंतरिक्ष को घेर सकते हैं। तो कैसे फिर फुलिशली लोग सोचते हैं कि हम भगवान बन सकते हैं? जो मायावादी लोग हैं वो कहते हैं ना, हम लोग भगवान बन सकते हैं। तो अगर आप भगवान बन सकते हैं तो थोड़ा एक्सपैंड करके दिखाइए, कम से कम इतना दिखाइए कि आपका घर ही भर जाए। तो इससे हमें पक्का प्रूफ मिलता है कि हम लोग कभी भगवान नहीं बन सकते। श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, मम वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। हे अर्जुन, तुम जितने भी देख रहे हो वो सब मेरे अंश हैं। वो भगवान कभी नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे हैं सनातना, सनातन है उनका जो आकार है वो सनातन है, इतना आकार है, कंफर्म है। ये नहीं कि वो बाद में इतना विस्तार करेंगे वो भगवान बन जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो लेकिन जब हम भगवान की सेवा में जुड़ते हैं, भक्ति करने का प्रयास करते हैं, तो हम देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि लोग हंसी उड़ाते हैं या विरोध करते हैं परिवारों में। अक्सर ये 99.9 ये सिचुएशन होती है। अगर पति भक्त बन गया तो पत्नी परेशान, पत्नी भक्त बन गई तो पति परेशान, पुत्र भक्त बन गया तो पूरा घर परेशान। तो होता क्या है कि हमें क्या करना है, जैसे बलि महाराज संकल्प के साथ बैठे हैं कि चाहे गुरु उन्हें मना कर रहा है तो भी वो अपने कार्य को कर रहे हैं, अगर वो ठीक मार्ग है तो। जैसे प्रभुपाद जी ने भगवद्गीता में कहानी सुनाई ना, छोटी छठे अध्याय में, कि एक चिड़िया थी, उसके अंडे ले लिए समुद्र ने, और वो चिड़िया क्या कह रही है, मैं अपने चोंच से थोड़ा थोड़ा जल लूंगी, बाहर फेंकूंगी, समुद्र को सुखा दूंगी। तो सारे पक्षी हंसी उड़ा रहे हैं उसकी, ये देखो पागल चिड़िया, इतनी चोंच में इतना सा पानी आता है, समुद्र को सुखाने चली। लेकिन बाद में गरुड़ जी आते हैं, उन्हें गरुड़ जी सुरक्षा करते हैं, उन्हें उनके अंडे मिलते हैं। तो मैं इस कथा से सोच रहा था कि प्रभुपाद जी ने जो ये कथा सुनाई है इससे हमें बहुत टीचिंग मिलती है। अगर हम सोचें ध्यान से तो क्या टीचिंग मिलती है इस कथा से? हम लोग भी उस चिड़िया की तरह से ही हैं। हम लोग भी इस भौतिक संसार को सुखाना चाहते हैं, इस भौतिक संसार की जो कामनाओं का जो सागर है उसको सुखाना चाहते हैं, एक एक मन के से जप करके। लेकिन जैसे उस चिड़िया की हंसी उड़ाई जाती है, इस संसार के लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं कि ये चले हैं भगवान को प्राप्त करने, देखो अच्छा भला पढ़ाई की थी, डिग्री ली थी और जाकर के कैसे कपड़े पहन लिए, हंसी उड़ाते हैं। लेकिन अगर हम उस चिड़िया की तरह संकल्प रहे, हमारा संकल्प अडिग रहे और पहाड़ों की तरह से, जैसे सुखदेव गोस्वामी एक उदाहरण देते हैं दसवें स्कंध में कि जो पहाड़ है जितनी उस पर वर्षा होती है वो अडिग रहता है, वो कभी डिगता नहीं, और उल्टा क्या होता है, जब वर्षा तेज होती है तो निखरता है, स्वच्छ हो जाता है, उसकी धूल भर जाती है। तो एक भक्त भी ऐसा संकल्प किए रहता है। तो जैसे गरुड़ जी ने रक्षा की, तो हमारे श्री प्रभुपाद जी ने हमें रक्षा का पहले ही डिक्लेयर किया हुआ कि अगर तुम 75% भी शुद्ध हो गए तो मैं तुम्हें बैकडोर से गोलोक धाम में भेज दूंगा। तो हमें उस चिड़िया की तरह अपने संकल्प को बनाए रखना चाहिए, लेकिन कभी भी डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए सिचुएशन से। जैसे बलि महाराज वहां बिल्कुल अडिग बैठे हैं, और जैसे भी परेशानियां, जैसे भी स्थिति आए, जैसे कि किसी ने एक बार मुझे व्हाट्सएप भेजा था, बड़ा अच्छा व्हाट्सएप था, कि जीवन में समस्याएं आए इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन जो इस समस्याओं से निकलते हुए पार हो जाए इट्स ए आर्ट ऑफ लाइफ। तो हमें आर्ट ऑफ लाइफ का प्रयोग करना पड़ेगा कि हम कैसे इस समस्याओं से जूझते हुए आखिर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। प्रहलाद महाराज बोलते हैं, बड़ा ही सुंदर एक श्लोक है ये श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंध के 15वें अध्याय का 17वां, सदा संतुष्ट मनसा सर्व सुखमय दिशा सरकरा कंटकादिभ्यो यथोपान तपद शिवम। देखिए क्या कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने जिस जैसे पैरों में जूते पहनकर चलने वालों को कंकड़ और कांटों से कोई भय नहीं होता, जब हम जूते पहन लेते हैं तो कोई भय नहीं होता कंकड़ और कांटों से, ऐसे ही जिसके मन में संतुष्टि हो कि मैं जो कर रहा हूं अपने वरिष्ठ वैष्णवों के मार्गदर्शन में वो उसी के समान है, उस जूते के समान है जो सदा सर्वदा सभी जगह सुखी सुख उसे मिलेगा। थोड़ा थोड़ा कष्ट शुरू में सहन करना पड़ सकता है, जैसे श्रेयस और प्रेयस हम जानते हैं ना, इस थोड़ा सा सुख मिलता है उसको बोलते हैं क्या होता है प्रेयस, लेकिन जो असली सुख है श्रेयस वो आने वाला है। अगर थोड़ा अपना संकल्प मेंटेन रहा तो निश्चित रूप से हम लोग कर पाएंगे, अपने लक्ष्य को अचीव कर पाएंगे। तो इसके अंदर कभी कभी जब परेशानी आती है हम लोगों को तो अक्सर सवाल पूछा जाता है कि तृणादपि सुनिश्चय लेना चाहिए भक्तों को ना, लेकिन तृणादपि सुनिश्चय कैसे रहे, कैसे हम अपने आप को संकल्प के साथ बनाए रख सकते हैं, क्योंकि संकल्प शब्द तो बहुत अच्छा है कि संकल्प अगर हम मेंटेन करें तो हम अचीव कर पाएंगे, लेकिन हाउ टू अचीव दिस संकल्प, यानी संकल्प को हम कैसे मजबूत करें। तो इसके विषय में श्री प्रभुपाद जी की एक इंस्ट्रक्शन है जो बहुत ही सुंदर है। प्रभुपाद जी कहते हैं जब कभी भी आपको कोई कष्ट दे, कोई भी हो सकता है इसमें ना, आप क्या सोचो उस समय, आप ये सोचो कि उन भगवान का उस विधाता का ये विधान है, और ये जो व्यक्ति मुझे कष्ट दे रहा है ये तो उसको क्या कर रहा है, ये तो एक विधान पूरा करने आया है जो, और ये मेरे पापों को कम करने आया है, क्योंकि जब हमें दुख मिलता है कष्ट मिलता है तो हमारे पाप कम होते हैं ना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं उसका तो हमें आदर करना चाहिए। जैसे मान लीजिएगा एक पति के सामने उसकी पत्नी आ गई और 24 घंटा वो जब भी जाता है घर में कलह होता है तो वो फिर बड़ा दुखी रहता है, मैं कैसे आप इसके साथ रह पाऊं, तलाक और इधर उधर जाता है। लेकिन शास्त्र बताते हैं ऐसी कंडीशन में क्या करें, वो ये विचार करें कि ये जो मुझे कष्ट दिया जा रहा है इस व्यक्ति के रूप में, ये तो उस विधान को, मेरे कर्मों का जो विधान था, मेरे बुरे कर्मों का जो विधान था उसको मुझे देने आया है। जैसे पोस्टमैन मान लीजिएगा आपके पास एक लेटर लेकर आया कि आपका ये इतना चोरी हो गया माल, इतना आपको दुख है, तो आप ये थोड़ा रोगे पोस्टमैन को जाकर के उसका गला पकड़ोगे कि आपने ऐसी खबर क्यों सुनाई, वो तो जस्ट आपको न्यूज देने आया है। तो ठीक वैसे ही जो हमें संसार में कष्ट मिलते हैं उसको, उसका आदर करना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं उसका हमें आदर करना चाहिए और भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि, क्योंकि भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों को यश देने के लिए ही ऐसी दुविधाओं में डालते हैं। जैसे कि पांडवों का हमने देखा, पांडवों का देखिए बड़ी सभा में उनकी पत्नी का सम्मान नहीं हुआ और उन घर में आग लगाई गई, जहर दिया गया, कितने कष्ट हुए। तो भगवान अपने भक्तों को यश देने के लिए, अगर इजी गोइंग हो जीवन में, अगर हमारी लाइफ सोचिए इजी गोइंग है, या पांडवों का इजी गोइंग लाइफ होती तो कोई सुनता, कोई उनकी महानता को पहचानता। प्रभुपाद जी ने कितने कष्ट सहे, अगर इजी गोइंग लाइफ होती प्रभुपाद वहां जाते और किसी को कहते भैया हरे कृष्ण माला का 16 माला चालू कर दो, तो वो खुद भी चालू कर देता, अपने परिवार को भी चालू कर देता और एक महीने में पूरा अमेरिका डिबूटी बन जाता, तो प्रभुपाद की वो महानता, वो यश नहीं फैलता। तो ठीक हमारे साथ भी ऐसा ही भगवान करते हैं, हमें जो कष्ट देते हैं, बाधाएं देते हैं, हमें क्या करते हैं, जैसे सोने को आग में डाला जाता है, तो घबराना नहीं चाहिए कभी भी आध्यात्मिक जीवन के अंदर, घबराना नहीं चाहिए। सोने को जब आग में डाला जाता है तो वो निखर कर आता है और फिर क्या बनता है, गहना बनता है, आभूषण बनता है। तो ठीक उसी प्रकार से तो इसमें थोड़ा इसकी चर्चा और करते हैं हम लोग कि जो गुरु जी हैं, अब देखिए गुरु जी कह रहे हैं कि आप ये मत दो, ये तो साक्षात विष्णु है, ये सब ले जाएगा पहले पग में दूसरे पग में और कहां रखोगे। तो ऐसे बोगस गुरु का त्याग किया जा सकता है, श्री भक्तिसिद्धांत महाराज कहते हैं। और जो कोई भी, ये एक्सट्रीम सिचुएशन है, क्योंकि भागवत क्लास है तो हम बोल सकते हैं, संडे लॉ फीस्ट और भगवत गीता क्लास में हम ये नहीं बोल सकते, भागवत क्लास में हम बोल सकते हैं। जो कोई भी अगर हमारी भक्ति में बाधा बनता है कि हमें भगवान से दूर ले जाता है तो हम उसका त्याग कर देना चाहिए। इतिहास में कहीं नहीं मिलता कि गुरु का त्याग कर दिया हो, क्योंकि कहा गया है कि अगर कोई गुरु का त्याग करता है उसके शरीर को तो कीड़े कुत्ते भी नहीं खाएंगे। अगर कोई गुरु का द्रोह करता है, खासकर से वैष्णव परंपरा के अंदर, उसके शरीर इतना दूषित हो जाता है कि उसे कीड़े भी नहीं खाने। लेकिन अगर कोई बोगस गुरु है जो भगवान से मिलने की बजाय वो हमें दूर कर रहा है, ऐसे बोगस गुरु को हम रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमने कई, एक बार मैंने कैलकुलेशन में निकाले थे, करीब 7-7 रिश्ते हैं। ऐसा हुआ कि अगर बाधक बना तो त्याग दिया, जैसे भरत महाराज ने माता को त्याग दिया। माता को त्याग नहीं किया जाता, लेकिन केकई ने जब प्रभु राम से उन्हें अलग किया तो माता का त्याग किया कि हे माता केकई, आज के बाद मैं तुम्हारा मुख नहीं देखूंगा, तुमने मुझे राम से अलग किया है। दशरथ महाराज पत्नी का त्याग कर दिया, आमतौर पर तलाक होता नहीं है, शास्त्रों में तलाक नहीं मिलता, लेकिन ये एकमात्र ऐसी घटना मिलती है कि जिस समय केकई को मना रहे हैं दशरथ महाराज, उनके चरणों में गिर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि मेरे प्राणों के टुकड़े को आप जंगल में मत भेजो, वनवास में मत भेजो, और वो श्राप देते हैं बल्कि वहां पर एक केकई को, वो कहते हैं आज से मैं तुम्हारा त्याग करता हूं और एक श्राप देते हैं, आज के बाद हे केकई सुन लो, मैं पूरी नारी जाति को श्राप देता हूं, आज के बाद अगर कोई भी स्त्री उसके पति के द्वारा मनाई गई जैसे मैं तुम्हें मना रहा हूं, तो ऐसी स्त्री कभी भी मनुष्य शरीर धारण नहीं करेगी और हमेशा हमेशा वो नरक में ही वास करेगी। वो पूरी नारी जाति को श्राप देते हैं। तो पत्नी का त्याग कर दिया, सोचिए, भाई का त्याग कर दिया किसने? विभीषण ने, क्योंकि प्रभु राम के मार्ग में बाधक आ गया। तो ऐसे कई उदाहरण हम देख सकते हैं जो कि अगर बाधक, पिता का त्याग कर दिया किसने? प्रहलाद महाराज ने। पिता खुद उनकी भक्ति में बाधक आ गया था तो पिता का त्याग कर दिया। ऐसे कई सीरीज एक बार हमने बनाई थी करीब 7 रिश्तों की, कि जिसमें कि अगर भक्ति में बाधक बन रहा है तो पहली चॉइस किसको दी? कृष्णा कॉन्शियसनेस को चॉइस दी कि नहीं, ये तो बिल्कुल इसी, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो बलि महाराज ने गुरु का त्याग किया, ये सबसे अद्वितीय घटना है, और उन्होंने उनके कहने को नहीं माना। हालांकि शास्त्रों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना मिलती है। देखिए, जो भक्त होता है वो कमल के, कमल से उसकी तुलना की गई है। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक वर्स, एक्चुअली वर्स मुझे याद नहीं, बट उसका ट्रांसलेशन मैं आपको सुना रहा हूं, कि जो भक्त होता है वो कमल के फूल के समान होता है, और जो गुरुजी होते हैं वो पानी के समान होते हैं, और जो सूर्य होता है वो भगवान के समान होता है। अगर सोचिए, कमल का फूल पानी का त्याग कर दे तो वो सूर्य क्या करता है? उसी कमल को सुखा देता है। लेकिन अगर वही कमल का फूल पानी की शरण में रहे तो वही सूर्य क्या करता है? उसे खिला देता है, है ना? तो ठीक वही स्थिति है यहां पर भी। अगर एक भक्त गुरु की शरण में रहता है, गुरु के अनुगत रहता है, गुरु के आदेशों को एज इट इज फॉलो करता है, तो वो उसी तरह उसका चेहरा खिला रहता है, हमेशा आनंद में रहता है, एंजॉय करता है कृष्ण भक्ति को। लेकिन अगर गुरु के आदेशों का पालन वो नहीं करता है, गुरु के आदेशों से थोड़ा डाइवर्ट रहता है, तो फिर उसका मन हमेशा खिन्न रहेगा और काम वासना में उसका आकर्षण होगा, भौतिक संसार में उसकी रुचि बढ़ेगी और उसको संसार अच्छा लगेगा। हमारे गुरु महाराज हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि जब हम अच्छी साधना करते हैं तो हमें माया का जो चेहरा है वो बड़ा खराब नजर आता है, बदसूरत नजर आती है, लेकिन जब जिस दिन हमारी साधना बड़ी अच्छी होती है उस दिन क्या होता है, माया का चेहरा बदसूरत नजर आता है। लेकिन साधना जिस दिन अच्छी नहीं होती उस दिन माया का चेहरा हमें बड़ा सुंदर लगता है, हमें मॉल्स अच्छे लगते हैं, लोगों की ड्रेसेस अच्छी लगती हैं, खाना अच्छा लगता है। तो हमें इसलिए गुरु के शरण में रहना चाहिए, हमेशा जैसा गुरु ने कहा उसी प्रकार से हमें रहना चाहिए। तो जो बलि महाराज, इसलिए आत्म समर्पण, जो नवदा भक्ति का वो श्लोक है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम, तो उसके जो लास्ट है आत्मसमर्पण आत्मनिवेदनम, उसके आचार्य हैं। तो आप लोग जानते हैं कौन कौन आचार्य, किस किस का आप लोग दोहराएंगे, जस्ट 5 मिनट में और लूंगा आपके। सबसे पहले कि श्रवणम के आचार्य कौन है? हाँ, कीर्तनम सुखदेव, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम प्रहलाद महाराज, हाँ, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, नेक्स्ट, हाँ, अर्चनम, भक्तु महाराज वंदनम हा अक्रूर अर्चना मंदिरम दास्यम सख्यम और आत्मनिवेदन तो अंतिम के ये है। आत्मनिवेदन का इन्होंने ऐसा एग्जाम्पल दिया है कि कुछ भी नहीं रखा, सब कुछ भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। तो ये जो स्कंध है खासकर से हमारे जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा है उनके लिए बहुत विशेष है। ये जो आठवां स्कंध है भागवतम का, इसमें यही शिक्षा लेनी चाहिए बलि महाराज से कि उन्होंने सब कुछ दे दिया। और देखिए गुरु जी क्या कह रहे हैं, नरक में जाओगे, इससे अगले श्लोक में कहेंगे निष्ठा तेल नरके मन ने, तुम नरक में जाओगे। तो जो भौतिकतावादी व्यक्ति होता है वो संसार से लूट लेना चाहता है, लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है वो लुट जाना चाहता है, लुट लो मुझे, सब कुछ भगवान के चरणों में चढ़ा देता है। और फिर वो घाटे का सौदा नहीं रहता। भगवान जो है जिस समय सुदामा जी आए, सुदामा चावल लेकर आते हैं, देखिए वो भी मांग कर लेके आई उनकी पत्नी, और भगवान को देते नहीं, भगवान छीन कर खाते हैं। तो भगवान ने कुछ नहीं दिया, जबकि सुदामा कुछ लेने आए थे मन से, कहा नहीं उन्होंने, जानते क्यों नहीं दिया भगवान ने, भगवान को शर्म आ रही थी। आचार्य बताते हैं कि भगवान ने सुदामा को डायरेक्ट कुछ इसलिए नहीं दिया कि भगवान को शर्म आ रही थी कि मैं इसकी बराबरी का नहीं हूं, क्योंकि इसकी बराबरी का मैं कब होऊंगा, जब मैं सारी संपत्ति इसके चरणों में डाल दूं और मैं मांगने जाऊं, क्योंकि मांगना सबसे बुरा काम होता है। देखिए मैं सारी संपत्ति इस ब्राह्मण के चरणों में चढ़ा दूं जिसका भी मैं स्वामी हूं, और फिर मैं मांगने जाऊं और फिर मैं इस ब्राह्मण को दूं, तो मैं बराबरी का मित्र होऊंगा, इसने तो मांग करके मेरे लिए दिया है। तो भगवान को शर्म आ रही थी, भगवान ने इसलिए दिया नहीं, कुछ नहीं दिया, चुपचाप जब वो घर पहुंचा तो पता चला कि महल बन गए, ये बन गए। तो भगवान के चरणों में हम जब कुछ देते हैं तो भगवान ऋणी हो जाते हैं, वो सोचते हैं मैं कैसे इसका ऋण चुकाऊं। जैसे गोपियों को भगवान क्या कहते हैं, हे गोपियों तुम्हारा जो ऋण है मैं युगों युगों तक नहीं चुका पाऊंगा, क्योंकि तुमने मेरे लिए जो त्याग किया है उसका ऋण इतना चढ़ गया है मुझ पर। तो जो हम भगवान के लिए त्याग करते हैं, जैसे सुबह उठने का त्याग है, मंगल आरती का समय होता है, तो उस समय में सोचना चाहिए गोपियों ने सब कुछ छोड़ दिया, मैं नींद नहीं छोड़ सकता, मैं ये मखमल का गद्दा नहीं छोड़ सकता, ये कंबल नहीं फेंक सकता, ये भौतिक संसार में मैं चाय नहीं छोड़ सकता, ये ऐसे गलत संग नहीं छोड़ सकता। तो भगवान ऋणी हो जाते हैं, और भगवान है अभी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ द्वापर में थे और तब थे, नहीं। तो एक कोटेशन है इसलिए श्रद्धानंद महाराज का, बहुत सुंदर कोटेशन दिया महाराज ने। महाराज ने कहा ए डिवोटी टेक्स ओनली कृष्णास लविंग सर्विस सीरियसली एंड ही डोंट टेक एनी मटेरियल डिजायर्स सीरियसली। भौतिक संसार में जितने भी कार्य है, जितनी चिंताएं हैं, जितनी इच्छाएं, वो सीरियसली नहीं लेता, वो सब पार्ट ऑफ बिजनेस, लेकिन भगवान की सेवा को वो बहुत सीरियसली लेता है। तो हमें भी इन्हीं जिस तरह से ये आचार्य हैं बलि महाराज, इनके अनुगत होना चाहिए, इनके चरणों में हमें शरण लेनी चाहिए। खैर जब अंत होता है तो ये बहुत ही, जैसा मैंने शुरू में कहा कि जिस समय ये यज्ञ संपन्न होगा आगे चल करके, तो जब अंत बिल्कुल सब हो जाएगा, बलि महाराज को ले लेंगे और बलि महाराज को डाल देंगे और उनकी पत्नी आएगी और सब जब हो जाएगा, इस लीला में ये मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि हमारे इस्कॉन के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण घटना है। आप कहोगे कैसे, क्योंकि हम लोग प्रचार करना चाहते हैं, हम लोग प्रचार के लिए कहा जाता है वरिष्ठ वैष्णवों के द्वारा कि जाओ कीर्तन करो। इस अध्याय का जब अंत होगा तो हमारे लिए बहुत ही खुशी का समाचार मिलेगा, और वो क्या, खासकर से इस्कॉन भक्तों को। जब 99 में यज्ञ में आ गए और भगवान चिंता करेंगे कि शुक्राचार्य से कहेंगे कि इस बलि महाराज के 99 यज्ञ हुए और सारा त्रुटि रह गई, अब कैसे इसको, कैसे ये सब सक्सेसफुल किया जाए समारोह, हे मुनिवर आप ही बताइए, शुक्राचार्य जी आप ही बताइए। तो शुक्राचार्य जी बहुत ही सुंदर बात कहेंगे और वो हमारे लिए कुछ कभी क्या है, वो कहेंगे हे प्रभु मंत्रों के उच्चारण में कोई भी उत्सव अगर किया जाए संसार में, शुक्राचार्य जी घोषणा कर रहे हैं, मंत्रों के उच्चारण में, कर्मकांड के निर्वाह में, देश काल व्यक्ति तथा सामग्री के विषय में त्रुटियां हो सकती हैं। देखिए कहां इशारा कर रहे हैं शुक्राचार्य जी, कोई भी उत्सव किया जाए, यज्ञ किया जाए, मंत्रोच्चार में कमी हो सकती है, सामग्री में कमी हो सकती है, किसी भी काम में कमी हो सकती है, किंतु आपके नाम का जो पवित्र कीर्तन है उससे वो सारी की सारी त्रुटियां पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए इस बलि महाराज के इस अश्वमेध को पूर्ण करने के लिए अब हम क्या करें, सब मिलकर के हरे कृष्णा कृष्णा ये शुक्राचार्य सक्षम करें। इस बिल्कुल जब ये कंसेप्ट पूरा होगा तो शुक्राचार्य जी इस बात को कहेंगे कि हरे कृष्ण, यदि जब आपके नाम का कीर्तन कर दिया गया प्रभु तो सब पूर्ण माना जाएगा। तो इस प्रकार से आज ये श्लोक है, हमने आज चर्चा की आप भक्तों के समक्ष, और निश्चित रूप से मुझसे बहुत सारी त्रुटियां हुई होंगी, लेकिन आप बहुत विनम्र दयालु वैष्णव है यहाँ के, वो क्षमा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है या चर्चा तो आपका स्वागत है। यस बोल। बिल्कुल अच्छा प्रश्न, बहुत धन्यवाद। देखिए जो भी भगवान की लीला में भाग ले रहे हैं वो सारे ही भगवान के भक्त हैं, जैसे कि रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, वो तो बहुत खूंखार है, भगवान से टक्कर ले रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, है ना, लेकिन वास्तव में वो कौन है, जय विजय। जैसे दुर्योधन, गर्ग संहिता में घटना मिलती है दुर्योधन की, कि सब भगवान सूची बनाते हैं, सब पूछते हैं प्रभु मैं क्या बनूंगा, तो पार्वती देवी भी पूछती है प्रभु मैं क्या बनूंगी आपकी लीला में, आप जा रहे हो, तो पार्वती देवी को भगवान कृष्ण कहते हैं एक बार तुमने शिव जी की उपस्थिति में मुझे बड़े ध्यान को घूर के देखा था, इसलिए तुम्हारी वो इच्छा पूरी करूंगा, तुम मेरी पत्नी बनोगी। तो वो जानते कौन बनी, जो जामवान की पुत्री थी, जामवंती। तो इस तरह से बहुत लंबी सूची है गर्ग संहिता के अंदर कि कौन क्या बना। ब्रह्मा जी पूछते हैं प्रभु मैं क्या बनूंगा, तो ऐसे सब सबको भगवान बताते हैं। तो इसी तरह से जब सबका नाम लिस्ट में लिख लिया कि ये बनेगा, ये बनेगा, दुर्योधन बहुत लास्ट में आता है इसका नाम सुयोधन होता है वहां पर। दुर्योधन पूछता है प्रभु आप सब जा रहे हो, मैं तो लीला में, मुझे भी कुछ मिल सकता है क्या, क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। और किसको कह रहा है, बलराम जी को कह रहा है, आप तो मेरे गुरु जी हो। तो बलराम जी कहते हैं चिंता मत करो, तुम अवश्य चल सकते हो, लेकिन अगर तुम चलोगे तो तुम्हें थोड़ा नेगेटिव रोल मिलेगा। वो कहते हैं प्रभु कुछ भी मिल जाए, आपका संग मिलेगा ना, आपका अगर संग मिलेगा तो मैं तैयार हूं, कुछ भी सहने के लिए तैयार हूं, संसार मुझे भले ही बुरा भला कहे, लेकिन आपका संग चाहिए मुझे। तो फिर बलराम जी कहते हैं तथास्तु। तो ये हम जितने भी लीला में भाग लेते हैं, चूंकि तभी हम बोलते हैं नित्य लीला प्रविष्ट, जब जय बोलते हैं तो नित्य लीला का मतलब यही है कि जब यहां से जीव आत्मा शुद्ध होती है, भगवान के धाम जाती है, तो उसे डायरेक्ट गोलोक धाम नहीं मिलता, सबसे पहले नित्य लीला जहां आज की तिथि में भगवान भी चल रही है वहां प्रवेश कराया जाता है। उसका एक और टेस्ट होता है, फाइनल टेस्ट, कि वहां वो कैसे रिएक्ट करता है, फिर वहां से शिफ्ट किया जाता है उसे गोलोक धाम। ठीक है, तो इस तरह से शुक्राचार्य भगवान के भक्त, भगवान की विभूति है। कवि नाम अहम उष्णा कवि, भगवान बोलते हैं जब अर्जुन ने पूछा कि आपकी विभूतियां सुनाइए, तो भगवान ने बताया कि विचारकों में मैं उष्णा कवि हूं, यानी शुक्राचार्य हूं मैं। और जैसा मैंने शुरू में पढ़ के सुनाया, आज वो पॉजिटिव हूं क्योंकि भगवान के भक्त हैं। वर्षा जब होती है तो वही सारे नेगेटिविटीज को बहुत साफ करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। यस ऐसा ऐसा कुछ श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता और तात्पर्य गर्ग संहिता, जितने पुराणों का मैंने अभी तक देखा है, ऐसी कोई घटना मिलती नहीं कि किस कारण से उनको बनना पड़ा। लेकिन ये जरूर है कि जैसा कि इसी अध्याय में हम सुन रहे हैं, प्रभुपाद के तात्पर्यों से हम सोच समझ सकते हैं कि उनकी रुचि कर्मकांड में थी ज्यादा, यज्ञ हवन, जैसे उनको हो रही है ना चिंता हाँ, पुरोहित की चिंता हो रही है कि शरीर का ही हित करना चाहते हैं, बस अपना लाभ चाहते हैं, और इसलिए रोक भी रहे हैं कि फिर मुझे क्या देगा ये, जब ये बलि महाराज बिल्कुल कंगाल हो जाएगा, सब कुछ लुटा देगा, तो मुझे क्या मिलेगा। तो इससे कुछ कुछ हमें आभास होता है प्रभुपाद के तात्पर्य से, कि उनकी जो सोच है वो शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति अगर होती, अगर जिस व्यक्ति की शुद्ध भक्ति नहीं होती तो भगवान तो अंतर्यामी है, फिर उसको उसी पार्टी में भेज देते हैं ना। तो इसलिए उनको वहां का नियुक्त करते हैं। योग्यता बहुत, देखिए योग्यता कितनी है कि उनका सर काट भी दिया जाता बलि महाराज का, तो वो फिर भी जोड़ सकते थे। इसलिए वामन देव ने युद्ध नहीं किया बलि महाराज से, इसलिए वो जानते थे भगवान वामन देव कि अगर इससे युद्ध करूंगा, इसके सर को काटूंगा तो फिर से जोड़ देंगे इनके गुरु। इसलिए उन्होंने क्या किया, उनका सब कुछ छीन लेता हूं मैं ब्राह्मण बन के, है ना। तो इसलिए ये आभास होता है हमें प्रभुपाद के तात्पर्य से, कि उनकी जो सोच है, प्रभुपाद कई ऋषि मुनियों के विषय में बताते हैं, जैसे कर्दम ऋषि के बारे में प्रभुपाद जी ने बताया कि ये शुद्ध भक्त नहीं थे। सोचिए कपिल देव के पिता हैं, भगवान के पिता हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि ये शुद्ध भक्ति नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये भगवान से इच्छा कर रहे थे मुझे एक पुत्र हो जाए, ये शुद्ध इच्छा नहीं है। शुद्ध इच्छा क्या है, जो मैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखाई है, ना धनम न जनम न सुंदरी कविताम जगदीश काम ये मम जन्मनी जन्मनी छोरे भवताद भक्ति अहेतु की तुए, अहेतु की भक्ति चाहिए बस, है ना। तो वास्तव में इसी से हम आभास लगा सकते हैं कि सोच नहीं है उनकी, इसलिए उनको फिर उस पार्टी का नेता बना दिया। ठीक है, और किसी का प्रश्न तो यहाँ पर हम विराम करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम के जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के नीता गुरु प्रेमानंदे हरि।